الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. موضوع درس ہے ماہ رجب کی معنوی فضیلت. معنویت اور مادیت مادیت کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وہ چیز انسان کی نظروں میں آ جائیں، مشاہدے کے ذریعے انسان محسوس کر سکتا ہے، وہ مادیت ہے. معنویت کیا ہے؟ معنویت یہ ہے عالم معنی میں ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دکھائی نہ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العزت سے لے کر اللہ کے فرشتے ہیں، منازل آخرت، آخرت کے وہ مختلف منازل جو ہمارے نظروں سے دور ہیں. لہذا مومن کی منزل مادیت نہیں ہے، مومن کی منزل معنویت ہے. اس دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت کی آباد کرنے کا ذریعہ قرار دیں. گرچہ آپ نے آخرت کی وہ چیزیں بالمشاہدہ دیکھا نہیں ہے مگر آپ کو یقین ہے ان چیزوں پر، اس عمل کے انجام دینے سے کل وہ مقام حاصل ہوگا. وہ مقام انسان کوشش کے بغیر، عمل کے بغیر پا نہیں سکتا. مومن کے لیے ہر وقت مومن کی شان ہے کہ وہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں. ماہ رجب اور ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان کے بارے میں مفاتیح الجنان کے اعمال کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو ماہ رجب سے لے کر ماہ رمضان میں اس بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بندے کو کمالات کے منزلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے ان مبارک مہینوں میں اعمال دے دیے ہیں، کچھ کرنے کی چیزیں بتائے ہیں. درود پر محمد و آل محمد. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर बंदा कोई वाजिब काम अंजाम दे तो मानवी एतबार से क्या हो गया, वो खुदा से करीब हो गया। गुनाह करेगा खुदा से दूर हो गया। और खुदा के मद्द मुकाबिल क्या हैं, शैतान। गुनाह करेगा शैतान से दूर हो गया, और गुनाह से ख़ुद को बचाएगा खुदा से दूर हो गया। लिहाजा क्या करना चाहिए मोमिन को, मोमिन ये कोशिश करे कि वाजिबात को अदा करें और हराम से बचें। तो मानवी एतबार से वो उसने बहुत बुलंद मकाम हासिल किया है। माह रजब के हवाले से जनाब शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब मफातीहुल जिनान में सिर्फ माह रजब के फजीलत, माह रजब के आमाल के हवाले से जो दुआएं, इस्तिग़फ़ार, नमाज, रोज़ा, इन तमाम चीज़ों का जो ज़िक्र किया है, मैंने गिन लिया ये पेजेस जितने भी हैं, 40 सफ़ों पर मुश्तमिल है। 40 सफ़ों पर मुश्तमिल माह रजब के आमाल हैं। माह रजब की फजीलत का ज़िक्र किया है, ये माह रजब की अज़मत क्या है। अब आइए इसी से ही हम जानना चाहते हैं। मरहूम शेख अब्बास कुम्मी फरमाते हैं, जानना चाहिए कि माह रजब, शाबान, माह रमज़ान बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। बहुत सी रिवायतें उनकी फजीलत में वारिद हुई है, बल्कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से रिवायत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। माह रजब अल्लाह का बड़ा महीना है, और कोई महीना भी इसकी अज़मत फजीलत को नहीं पा सकता। इस महीने में काफिरों से लड़ाई हराम है। रजब खुदा का महीना, शाबान मेरा महीना, और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। तकसीम किया, रजब खुदा का महीना, माह शाबान पैगंबर फरमाते हैं मेरा महीना है, और माह मुबारक रमज़ान मेरे उम्मत का महीना है, मेरे उम्मत का महीना। इसमें क्या पैगाम मिलता है आपको? इस मुबारक उम्मत के महीने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनूदी के लिए बहुत कुछ करना होगा। जो शख्स एक रोज़ माह रजब में रोज़ा रखे तो खुदा की खुशनूदी का सबब होगा, खुदा का गज़ब उससे दूर होता है। इस एक रोज़ा रखने की वजह से खुदा के गज़ब से दूर होता है। जहन्नम का दरवाज़ा, जहन्नम का एक दरवाज़ा उस पर बंद होता है एक रोज़ा रखने से माह रजब में। हज़रत मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जो शख्स माह रजब में एक दिन रोज़ा रखे तो जहन्नम की आग उससे एक साल के रास्ते के बराबर दूर हो जाती है एक रोज़ा रखे। जो शख्स तीन दिन इसमें रोज़ा रखे उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। और ये भी फरमाया कि रजब जन्नत की एक नहर का नाम है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शीरीन। जो माह रजब में एक दिन रोज़ा रखे वो इस नहर से पानी पिएगा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूर है, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना अल्लाह के इस्तिग़फ़ार का महीना है। इस्तिग़फ़ार यानी खुदा से मग़फ़रत तलब करने का महीना है। अपने लिए मग़फ़रत तलब करें, बख्शिश तलब करें। लिहाजा इस महीने में ज़्यादा मग़फ़रत तलब करना चाहिए, क्योंकि खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। रजब को असब भी कहते हैं, इसलिए कि रहमत खुदा इस महीने में मेरी उम्मत पर ज़्यादा होती हैं। लिहाजा ज़्यादा कहो अस्तग़फिरुल्लाह व असअलुहु तौबा, ज़्यादा कहो। किसका हुक्म है? जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। पैगंबर का हुक्म है कि अस्तग़फिरुल्लाह व असअलुहु तौबा कसरत से ज़्यादा पढ़ो। इब्ने बाबवेह ने मोतबर सनद के साथ, मरहूम शेख सदूक को इब्ने बाबवेह कहते हैं, शेख सदूक ने मोतबर सनद के साथ इब्ने सालिम से बयान किया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम की खिदमत में गया माह रजब के आखिर में, जबकि चंद दिन इस महीने के बाकी थे। रावी ये कह रहा है, जब आ हज़रत की निगाह मुझ पर पड़ी तो फरमाया इस महीने में रोज़ा रखा है। मैंने कहा नहीं अबना रसूलिल्लाह, तो फरमाया तुमसे इस कदर सवाब खोद हो गया है कि खुदा के अलावा कोई नहीं जानता उस सवाब के बारे में, खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। बखुदा ये महीना जिसको खुदा ने दूसरे महीनों पर फजीलत दी है, फजीलत को अजीम समझा है, इसमें रोज़ा रखने वालों का एहतराम अपने ऊपर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ने अपने ऊपर रोज़े रखने वालों का एहतराम को फ़र्ज़ किया है, वाजिब करार दिया है। तो मैंने कहा कि ए फरजंद रसूल, अगर मैं इस महीने के बकिया दिनों में रोज़ा रखूं तो रोज़ादारों का बाज सवाब नहीं पाऊंगा। फरमाया ए सालिम, जो शख्स इस महीने के आखिर में एक दिन भी रोज़ा रखेगा खुदा उसको महफूज रखेगा आलम नज़ा की सख्ती से। अजीज़ बच्चों, आलम नज़ा क्या होती हैं? आलम नज़ा यानी मरने का वो वक्त, मरते वक्त, उसको कहते हैं आलम नज़ा। रिवायात में वो आलम नज़ा के बारे में बहुत ऐसी सख्त रिवायतें आए हैं कि वो सख्त होगा, आलम नज़ा सख्त होगा, मौत का वक्त सख्त होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत को कैसे पाया, जबकि जी जनाब मूसा की मौत तमाम अंबिया में सबसे आसान तरीन मौत वाकई हुई है। अल्लाह के फरिश्ते जनाब मूसा से ख़िताब होकर फरमाते हैं या अहवनल मौत, ए मौत में आसान होने वाला, मौत को आपने कैसे पाया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने मौत को इस तरह पाया कि ज़िंदा जानवर से खाल उतारें तो उसको किस कदर तकलीफ़ होती है, तो इस तरह मैंने ऐसा महसूस किया। मौत का वक्त आलम नज़ा। परवरदिगार आलम किस कदर करीम है कि एक आखिर माह रमज़ान के माह रजब के आखिरी एक रोज़ा रखने पर उस मोमिन के आलम नज़ा को आसान कर देता है। और क्या, बाद मौत के खौफ से और अजाब कब्र से, यानी मौत के बाद की जो खौफ है कब्र के अजाब से, उसे महफूज रखता है। और जो शख्स इस महीने के आखिर में दो रोज़ा रखे तो वो सिरात से आसानी से गुजरेगा। जो शख्स तीन दिन आखिर माह रमज़ान में रोज़ा रखेगा वो रोज़ क़ियामत के अजीम खौफ से, उसकी सख्ती वहशत से महफूज रहेगा। जहन्नम की आग से बराअत का परवाना मिलेगा। हाँ, परवाना लिखा हुआ, हाँ, कोई चित कोई लिखा हुआ हो जिससे जहन्नम की आग से रहाई का कोई पैगाम मिल जाए, उसे परवाना, उसे परवाना कहते हैं, जहन्नम की आग से बचने का परवाना। और जानना चाहिए कि माह रमज़ान के रोज़े की फजीलत बहुत ज़्यादा वो वारिद हुई हैं, रिवायत हुई, जो शख्स इस पर कादिर ना हो, रोज़ा नहीं रख सकता, किसी को कोई ना कोई बीमारी है, हाँ, शुगर है या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो क्या करें? फरमाते हैं रोज़ाना 100 मरतबा इन तस्बीहों को पढ़ो ताकि रोज़े का सवाब पाएँ। यहाँ पर वो तस्बीह मा फातिहुल जिनान में आया है, रुजू फरमाएं इंशाअल्लाह। फिर माह रजब के आमाल के हवाले से मरहूम शेख अब्बास कुम्मी ने आमाल के दो किस्म किए हैं, एक मुश्तरका आमाल है, यानी माह रजब की पहली तारीख से आखिर तक अंजाम देने वाले आमाल, उनमें बहुत सारी दुआएं यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी दुआएं यहाँ मफातिहुल जिनान में मौजूद हैं, उन दुआओं में से हम माह रजब में हम पढ़ते हैं ना, माह रजब में हम पढ़ते हैं, वो दुआ क्या है? वो दुआ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, सईद इब्ने ताऊस ने रिवायत की है कि मोहम्मद इब्ने ज़कवान से, जो सज्जाद के नाम से मशहूर है, इतने सजदा किया, सजदे में इतना रोए कि नाबीना हो गए। ये मोहम्मद इब्ने ज़कवान सज्जाद के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैं फ़िदा हो जाऊँ, ये माह रजब हमको इस महीने में कोई दुआ तालीम फरमाएं कि खुदावंद आलम उसके ज़रिए से फ़ायदा अता करे। हज़रत ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर क्या, यामन अर्जुहु लिकुल्ली खैर व आमनु सखतहु इंद कुल्ली शर, या मन युअतिल कसीर बिल कलील, या मन युअति मन सअला, या मन युअति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुन मिन्हु व रहमा। ये सारे जो है दुआ इंशाअल्लाह होना तो ये चाहिए कि हर मस्जिद में दाएं बाएं जानिब किसी पहना फ्लेक्स पे लिख कर अपने अमवात के इंशाअल्लाह सवाब के लिए लिखा, ताकि सब लोग जो है इसको पढ़ें तो सवाब मिलेगा। ये छठे इमाम से है ये दुआ, तर्जुमा ज़रा गौर फरमाएं, यकीनन आप लोग गौर करते हैं। अजीज़ बच्चों को समझाने के लिए मैं इस तर्जुमे को सुनाना चाहता हूँ, या मन अर्जू लिकुल खैर, ऐ वो खुदा जिससे हर नेकी की उम्मीद करता हूँ, हर शर के वक्त उसके गुस्से से अमन चाहता हूँ, हर शर के वक्त अल्लाह के गुस्से से अमन चाहता हूँ। अल्लाह का गुस्सा हम जैसे लोगों का गुस्सा नहीं है, जब अगर गुस्सा इजहार करने पर आए तो कौमों को ज़मीन में दफना देता है, और वो तो अपने मकाम पर है। आरिफों के पास क्या चीज़ है? आरिफों के पास अजाब खुदा गुस्से का इजहार ये है कि उस आरिफ से, खुदा की मारिफत रखने वाले उस बंदे से अपनी जिक्र की मिठास को उठा लेता है। आरिफों को जान से जाना, माल का ज़ाया होना, बेइज्जत होना, इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के मुखलिस बंदों को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो रब्बुल इज्जत की निगाहों से एक लम्हे के लिए हटना, एक लम्हे के लिए अल्लाह अपने नज़र करम को उठाना, ये आरिफों के लिए बहुत सख्त है। मौलाए कायनात दुआए कुमेल में जो इरशाद फरमाया है उसकी तरफ मुतवज्जे है ना कि ए खुदा, आपने अपने गुनाहकार बंदों के साथ मुझे अगर अजाब दिया तो ये तो इस पर मैं अजाब इस पर मैं सब्र कर सकूंगा, मगर आपकी नजर करम से एक आन के लिए दूर होना, इस पर मैं कैसे सब्र करूं, इस पर मैं कैसे सब्र करूं। लिहाजा अजीजा ने मन इस दुआ का तर्जुमा यूं, ए वो खुदा जो अता करता है कम के मुकाबले में, कम के मुकाबले में अता करता है, ए वो खुदा जो उसे अता करता है जो उससे सवाल करता है, ए वो खुदा जो उसे अता करता है जो उससे सवाल ना करे, सवाल करे तो भी अता करता है, सवाल ना करे तो भी अता करता है, और जो उसको ना पहचाने उसे भी अता करता है, पहचानता नहीं है मगर अता करता है। हम क्या करते हैं, हम अपने जाने पहचाने हो तो उसको नवाजेगा, मगर रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत क्या है, रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है चाहे सवाल करे या ना करे, चाहे उसे पहचाने या ना पहचाने, चाहे उसकी इताअत करे ना करे, दुनिया अल्लाह की रहमत जो है दुनिया में आम है, सबको अता करता है। क्या शान है, उसी अजमत के मुताबिक हम दुआ करते हैं, यह है ना, या मन अर्जुह लिकुल खैर को मारिफत के साथ पढ़ लें, फिर दिल और जान से मोमिन के दिल से यह दुआ उठेगा तो फिर परवरदिगार आलम की इनायात के साए में हम इंशाअल्लाह जी सकते हैं। फिर अपने रहमत और लुत्फ से मुझको अता कर, मेरे सवाल की बुनियाद पर दुनिया की कुल नेकी और आखरत की कुल नेकी, मेरे सवाल के मुताबिक मुझसे दूर कर दे दुनिया की और आखरत की तमाम बुराइयाँ, दुनिया की कुल दुनिया और आखरत की सारी नेकियाँ तलब की आपने। हम क्या करते हैं, हम घर में परेशानी आ जाएँ तो किसी आमिल के पास जाते हैं, आमिल भी क्या करते हैं, अब हो साया आया है क्या करना पड़ेगा, काला मुर्गी काटना पड़ेगा, कहाँ कहाँ किस किस दर पे जाकर ठोकर खाते हो। ए मोमिन, तुम्हारी शान ये है कि जो खुदा ने फरमाया इंसान के लिए परेशानियाँ आने की वजूहात उसकी तरफ गौर फरमाएं, और अल्लाह के बारे में अगर कोई परेशानी आ चुका है तो पाक और पाकीज़ा जज्बात से सिद्क दिल से दुआ करें, हाँ कुल लेने की, दुनिया की कुल ने की, आखिरत के कुल ने, इस कुल में बहुत सारे, अल्लाह का कुल है ये, हमारा कुल नहीं है, इस कुल में न जाने क्या क्या जो है इस जुमरे में आता है, हमारा कुल नहीं है, अल्लाह के कुल पर छोड़ दिया है, ये कुल अल्लाह का है, अल्लाह के कुल में हमारे इल्म की गुंजाइश ही नहीं है कि उस कुल के दायरे में क्या कौन कौन सी नेकियां शामिल हो जाती हैं। ठीक है, उन तमाम बुराइयों से, हमने बुराई गिने चुने चंद बुराई हमने समझा हुआ था, मगर अल्लाह की बारगाह में मोमिन के लिए बहुत सारे बुराइयां हैं। अब आइए, एक मैंने अभी एक वाकया यहाँ किसी आलिम दीन की ज़बान से सुना, वो आप लोगों को हदिया करना जो है मुनासिब समझता हूँ। दुरूद पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्दुल्लाह इब्ने यहया मौलाए कायनात की जान निसार हैं, फरमाते हैं कि हजरत के जान निसारों में से थे, एक मकाम पर आकर गिर गया, गिरने की वजह से जख्मी हो गया। इमाम परेशान हो गए कि यहाँ कोई गिर कर ज़ख्मी होने का कोई असबाब नहीं है, ये कैसे हो गया इसके साथ। इमाम ने फरमाया, खुदा तुम्हारे तकसीर से तकसीरात से को माफ़ कर दें। अर्ज़ किया, मौला कौन सी तकसीर। फरमाया, वो जो तुम आज बिस्मिल्लाह भूल गए, आज जो तुम आते वक़्त बिस्मिल्लाह भूल गए, ये तुम्हारी तकसीर है। फरमाया, मौला मैं बिस्मिल्लाह भूल गया, मेरी तकसीर है, ये मेरे लिए कोई बुराई है? हाँ बुराई है। मौलाए कायनात अपने चाहने वाले से फरमाया हाँ बुराई है, हमारे चाहने वाला एक लम्हा भी खुदा की याद से गाफिल नहीं रहता है। अगर एक लम्हा भी मेरा चाहने वाला गाफिल हो जाए ये तुम्हारे लिए बुराई है। और इसी एक बिस्मिल्लाह को बोलने से खुदा ने तुम्हें जो है ये तवज्जो दिलाने के लिए किया है कि मैं खुदा के, इमाम मौलाए कायनात ने फरमाया मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारे मुहिब्बीन को परवरदिगार आलम जो भी अजाब देता है तो इसी दुनिया में देता है, आखरत में नहीं देता। मौलाए कायनात का फरमान है। तो लिहाजा अजीज़ा ने मन कोशिश ये फरमाएँ कि वाकई सच्चे दिल से मौला के मानने वाले हो जाएँ, ऐसे वैसे नहीं। हाँ हाँ, अब्दुल्ला इब्ने याह्या, जनाब अम्मार, जनाब मालिक, जनाब अबूज़र, इनकी जो हैं इबादी पहलू की तरफ, हाँ बंदगी परवरदिगार की तरफ मुतवज्जिह हो जाएं, फिर हम मौला अली के जो है चाहने वालों की इक्तिदा कर सकें। फिर हम क्या करते हैं, दुआ दुनिया और आखरत की तमाम बुराइयाँ, क्योंकि तेरी अता में नक्स नहीं है, मेरे लिए अपने फजल को ज़्यादा कर ए करीम। फिर ख़त्म होने के बाद जो है दाढ़ी को पकड़ के इस अंगुष्ट शहादत से हाँ हिला हिला कर तज़र्रु ज़ारी, बड़े जो है इनके सारी के साथ इस दुआ को पढ़ते हैं, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल नामा वल जूद, या ज़ल मन वल ताउल, हर्रम शैबती अलन्नार। ए साहिब ए जलालत बुजुर्गवारी, ए नेमत और बख्शने वाले, ए अता करम करने वाले, मेरे बुढ़ापे को जहन्नम पर हराम करार दे दें। ये दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, फिर फरमाया कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत है, जो शख्स माह रजब में 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू वहदहू ला शरीक लहू व अतूबु इलैह पढ़े, उसको सदक़े पर ख़त्म करें तो खुदा उसके लिए रहमत मग़फ़िरत को ख़ात्मा करार देता है। खुदा अपनी रहमत और मग़फ़िरत को ख़ात्मा यानी कुल रहमत और मग़फ़िरत उस पर इनायत फरमाता है। जो शख्स 400 मरतबा पढ़े उसके लिए शहीद का अजर लिखता है, 400 मरतबा पढ़े शहीद का अजर लिखता है। दसवां यह है कि जो शख्स माह रजब में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो खुदा उसके लिए 1,00,000 नेकी लिखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आसान है, हाँ ला इलाहा चलते हुए पढ़ो, बैठते हुए पढ़ो, मुसल्ले पे पढ़ो, सोते वक़्त पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते हैं कि 1,000 मरतबा अगर कोई पढ़ें तो उसके बदले में 1,00,000 नेकी उसके नामे अमल में लिखता है, बहेश में उसके लिए 100 शहर बनाता है, जन्नत में उसके लिए 100 शहर। हाँ, इस दुनिया में एक झुंपड़ी के लिए हम तरसते हैं, हाँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह 1,000 मरतबा पढ़ने से खुदा जन्नत में 100 शहर उसे अता करता है। ये मानवियत है, इन्हीं चीज़ों पर यकीन रखना है, और सिर्फ यकीन नहीं रखना है, अमल भी करना है, अंजाम। अभी माह रजब आ रहा है ना, इंशाल्लाह करें। ये सब कुछ है, बहुत सारे यहाँ है, अब वक्त भी बहुत कम है, गर्मी भी है। उन्नीसवां दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मरहूम शेख अब्बास ने कुम्मी ने जो मुश्तरक आमाल में मसलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से अब आए 19वें जो है आपको जो अमल, बीच में सब कुछ बताएं आप, फिर आप जो है यहाँ रह जाएगा। हाँ जी, आप फिर जो है दोबारा यहाँ मुझे जहाँ कहीं भी जो है सुनने के लिए तशरीफ लाएं तो भाग जाएंगे, इसलिए आप लोगों का भी ख्याल रखना होता है। 19वां, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मरवी है, जो शख्स माह रजब के रातों में से किसी एक रात में 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में हम्द और एक बार कुल या अय्युहल काफिरून, 3 बार सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, तो खुदा उसके तमाम गुनाहों को अजराह करम बख्श देगा, उसके गुनाहों को अजराह करम बख्श देगा अगर उसने इस तरह की नमाज पढ़ ली। 20वां, मरहूम मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद में फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम से मनकूल है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स माह रमज़ान शाबान रजब में हर रात हर दिन में 3 मरतबा हम आयतल कुर्सी कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास में से हर एक पढ़े, 3 बार कहें सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, और 3 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, 3 बार पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, 400 मरतबा कहें अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, तो खुदावंद आलम उसकी गुनाहों को बख्श देगा, चाहे वो बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों, दरिया के जाग के बराबर हों। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस महीने के रातों में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वारिद है, पढ़ना है, और वाज़ह रहे कि माह रजब की पहली जुमा को लैलतुर रगाइब कहते हैं, माह रजब की आने वाले पहली जुमा को लैलतुर रगाइब कहते हैं। इसमें बहुत फजीलत के साथ रसूल खुदा का एक अमल वारिद हो, जनाब रसूल खुदा ने एक अमल जो अंजाम दिया है वो आया है, जिसे सैयद ने इकबाल में अल्लामा ने इजाज़ा बनी जोहरा में नकल किया है। उन फजीलतों में से ये है कि उसकी वजह से बेशुमार गुनाह बख्शे जाएंगे, लैलतुर रगाइब में वो अमल अंजाम देने से बेशुमार गुनाह बख्शे जाएंगे। और जो शख्स इस नमाज को पढ़े जब उसकी कब्र की पहली रात आएगी तो खुदा उस नमाज को सवाब, उस नमाज का सवाब उसकी कब्र में भेजेगा, खूबसूरत शक्ल में फसीह जबान के साथ, और वो उससे कहेगी ए मेरे दोस्त तुझको बशारत हो जहन्नम, तुझको बशारत हो कि नजात पा गया हर सख्ती हर मुसीबत से, हर सख्ती और मुसीबत से तुम निजात पा गया। तो वो कहेगा कि तू कौन है, खुदा की कसम मैंने तुझसे बेहतर चेहरा नहीं देखा, तुझसे ज़्यादा मीठा कलाम नहीं सुना, तुझसे अच्छी खुशबू नहीं सूंगी। तो वो जवाब देगी मैं तुम्हारे वो नमाज जो फलान रात फलान महीना फलान साल में बजा लाया था, मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारा हक अदा करूँ, तुम्हारी मोनी से तन्हाई बनूँ, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे लिए मुनिस बनूँ, तुम्हारा दोस्त बन के बैठ जाऊँ। कब्र में अगर कोई मुनिस बन जाए तो क्या आसान होगा, दुनिया में तो हर कोई जो है दोस्त बनने के लिए तैयार है, मतलब के खातिर हो, कोई कोई वजूहात है, ठीक है, और क्या, तुम्हारी वहशत को दूर करूँ, जब सूर फूंका जाए तो मैं तुम पर साया करूँगा, क़यामत में खुशबहाल कि तुमसे नेकी मादूम नहीं हुई। और उसका तरीक़ा ये है, उस अमल का तरीक़ा ये है, फरमाते हैं रोज़े पंचशंबा, पंचशंबे यानी जुमरात, जुमरात के दिन अव्वल इस महीने में इस माह में रोज़ा रखें, जब शब जुमा आ जाए यानी इस महीने के अव्वल में रोज़ा रखें, जब शब जुमा आए तो अच्छा रोज़ पंचशंबा जुमरात के दिन जो है वो रोज़ा रखें, और شب جمعہ ہے تو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت ایک سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ انا انزلنا، 12 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو تو 70 مرتبہ کہیں اللہم صل علی النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں جائیں 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکت والروح، پھر سجدے سے سر اٹھائیں 70 مرتبہ کہیں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ یہ فرماتے ہیں اس مبارک مہینے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے، ماہ رجب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مستحب ہے۔ عمرہ اس ماہ میں فضیلت رکھتا ہے، روایت میں ہے کہ حج کی فضیلت کے قریب ہے، اس مبارک مہینے میں عمرہ انجام دینا حج کے فضیلت کے قریب ہے، منقول ہے جناب علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت نے عمرہ کیا رجب میں اور روز و شب خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے تھے، برابر سجدے میں رہتے تھے۔ یہ مشترکہ عمل ہے، خصوصی عمل کیا ہے، پہلی شب کو ماہ رجب کی پہلی رات کو جب چاند نظر آئیں تو یہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ عز وجل، اور چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے۔ پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ پہلی رات میں ماہ رجب کی پہلی رات میں غسل مستحب ہے، علماء نے فرمایا رسول خدا سے مروی ہے جو شخص ماہ رجب کو پائے غسل کرے ابتدا درمیان اور آخر میں، ابتدا میں درمیان میں آخر میں، تو وہ اس طرح گناہ سے باہر آتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ سوم زیارت ہے امام حسین علیہ السلام پڑھیں پہلی رات میں، چہارم نماز مغربین کے بعد 20 رکعت پڑھیں اور حمد اور توحید کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پڑھیں تاکہ خود اس کے عیال اہل و عیال اولاد محفوظ رہیں اور عذاب قبر سے پناہ میں، صراط سے بے حساب گزرے گا بجلی کی طرح۔ پانچواں یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ حمد علم نشرہ، 1 مرتبہ سورہ توحید، 3 مرتبہ توحید، 3 مرتبہ علم نشرہ، 1 مرتبہ توحید، 3 مرتبہ، یہ ایک مفصل ہے یہاں پر۔ رجب کا پہلا دن فضیلت کا دن ہے، اس میں چند اعمال ہے، روزہ رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کریں، تیسرا یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ طولانی دعائیں بہت سارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دن میں ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ مرحوم شیخ عباس قمی فرماتے ہیں پہلی رجب کو جو ہے ولادت ہے، مگر میرے نزدیک 3 ماہ سفر ہے، 3 ماہ سفر میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہو، شیخ عباس قمی کا تحقیق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رجب کو حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی شہادت 3 رجب کو ہوئی، اور 10 رجب کو حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے۔ 13ویں رات کی جو ہے اعمال ہیں، فرماتے ہیں واضح رہے جب رجب شعبان رمضان میں سے ہر ایک مہینے ماہ میں مستحب ہے کہ 13ویں کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، یاسین، تبارک الملک، توحید، اور 14ویں کی رات میں 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں، اور 15ویں کی رات میں 6 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ ان 3 مہینوں کی کل فضیلتیں حاصل کر لے گا، اس کے کے تمام گناہ شرک کے علاوہ بخش دیے جائیں گے۔ تیرواں دن ایام البیض کی ابتدا ہے۔ اس دن اور دو دن اس کے بعد کے روزوں کا بہت ثواب وارد ہوا ہے۔ تیرواں، چودھواں اور پندرواں دن جو ہے روزے کی بہت ثواب ہے، اور اس دن میں 13 رجب المرجب کو ولادت باسعادت حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت کی ولادت ہوئی ہے، انشاءاللہ جشن منائیں گے۔ عزیز بچوں، جشن منانا منقبت سے ہاں بڑے باوقار طور پر منانا ہے۔ یہ جو گلی کوچے میں ہونے والے جشن کا انداز صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ملے گا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو اذیتیں پہنچانا، دمال بجانا، یہ سارے کہاں سے آئے؟ یہ سارے غلط چیزیں ہیں، اسے نہیں کرو۔ پندرہویں رات کی فضیلت کے بارے میں چند اعمال۔ پندرہویں رات میں غسل کرنا مستحب ہے، پوری رات جاگنا تاکید ہے، اور زیارت امام حسین پڑھنا، 6 رکعت نماز جو تیرہویں کی رات میں ذکر ہوا اسی طریقے سے پڑھے۔ یہ سارے نمازوں کا بھی ذکر آیا ہے، یہاں مقام نہیں ہے۔ پندرہویں رجب کے جو ہے اعمال میں غسل ہے، زیارت امام حسین ہے، اور ابی نصر سے منقول ہے، میں نے سوال کیا حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، تو آپ نے فرمایا نیمہ رجب، رجب کی 15 تاریخ کو، نیمہ شعبان، ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو۔ نماز سلمان کے بھی طریقے آئے ہیں، وہ سب نماز سلمان یہاں بیان کرے تو پھر طولانی ہو جائے۔ عمل ام داود اس دن کا بہترین عمل ہے۔ فائدہ کیا ہوگا عمل ام داود انجام دینے سے؟ حاجتوں کو پورا ہونے، کشف کرامات ظالموں کے دور کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ کوئی اگر کرامات چاہتے ہیں، کوئی جو ہے ظالم سے دور ہونا چاہتے ہیں، کوئی اپنی حاجت چاہتے ہیں، عمل ام داود 15 تاریخ کو انجام دے دیں۔ بالکل مفصل ہے، یہ جو ہے یہاں بیان کرے تو پھر سراسر زیادتی ہوگا۔ اور اس ماہ کی، مہینے کی مہم ترین حوادث میں سے ایک حادثہ جو ہے 25 رجب المرجب کو حضرت باب الحوائج مولا مصعب بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 27 رجب، فرماتے ہیں یہ عظیم عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ میں نے اپنی ناقص زبان سے جہاں مجھے موقع ملا تھا، میں نے عرض کیا تھا یہاں اون محمد چوک سے آگے ماہ سفر کے 28 سفر کو میں نے عرض کیا تھا، 27 رجب جناب رسالت مآب کی تاج پوشی۔ اب آئیے میں خود جو ہے یہاں متن پڑھ لوں، اپنے طرف سے نہ کہوں۔ وہ دن جس دن رسول خدا مبعوث بے رسالت ہوئے، جبرائیل ان کی پیغمبری کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ اس دن کے چند اعمال ہے، غسل کریں، روزہ رکھیں۔ یہ دن تمام سال کے ان چاروں دنوں میں سے ایک ہیں جس میں روزہ رکھنا خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کثرت سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کثرت سے صلوات پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کریں؟ اور اس دن میں 27 رجب کو، 27 رجب کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پڑھیں۔ 27 رجب میں زیارت پڑھیں۔ یہ سب ہیں، اب سب بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا کر کے ان دنوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا نہ صرف ماہ رجب عاجزانہ دعا ہے صدقے محمد و آل محمد کے اس ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان المبارک میں صحت و سلامتی عطا کر کے ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضر مومنین کے مرحومین کو جوار معصومین میں عالی ترین مقام عنایت فرما۔ ہمارے آقا و سردار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہمارے فقہا مجتہدین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہ‌ای حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی کو طول عمر باعزت عنایت فرما۔ یا اللہ پروردگارا، وہ مومنین اہل بیت کے حرم سے دفاع کر رہے ہیں، اہل بیت کے حرم سے دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے ہیں، ان کے درجات بلند فرما۔ جو اہل بیت کے حرم سے دفاع کرتے ہیں، خدایا ان کو فتح و غلبہ عنایت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ہم سب کے عاقبت بخیر فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔